ये आकाशवाणी है। अब आप कनकलता से समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय आज एक याचिका पर सुनवाई करेगा। इस याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर पर बड़ी मात्रा में नकदी मिलने की घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस से तत्काल कार्रवाई करने और जांच की मांग की गई है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जवल भोयान की पीठ करेगी। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति वर्मा के निवास पर आग के बाद नकदी मिलने पर वे जांच के घेरे में आ गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की कलेजियम ने न्यायमूर्ति वर्मा को उनके मूल न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय में वापस भेजने का निर्णय लिया है। हालांकि न्यायमूर्ति वर्मा ने आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि उन्हें बदनाम किया जा रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों को भारत में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। लोकसभा में कल आवर्जन और विदेशी विधेयक 2025 पर चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भारत में अशांति फैलाने के लिए रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री शाह ने कहा कि देश में कोई भी अपनी मर्जी से नहीं रह सकता।
राष्ट्रीय सुरक्षा या सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा पाया जाएगा उसको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। देश धर्मशाला नहीं है, जो चाहे जिस उद्देश्य से चाहे यहाँ आकर रह जाएगा, ऐसा नहीं होगा। देश के अंदर तो इसका स्वागत है, मगर सुरक्षा के लिए खतरा है उसको रोकने का प्रावधान करने का हमारी संसद का अधिकार भी।
इससे पहले कांग्रेस के मनीष तिवारी ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि संविधान के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि आवर्जन अधिकारियों को ऐसे अधिकार दिए गए हैं जिससे लोगों को परेशान किया जा सकता है। बाद में लोकसभा ने विधेयक पारित कर दिया। जम्मू कश्मीर में सरकार ने रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति के हस्तांतरण पर स्टैम्प ड्यूटी को माफ कर दिया है। ये छूट 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगी। रक्त संबंधियों के बीच संपत्ति हस्तांतरण पर स्टैम्प शुल्क एक ऐसा कर है जो करीबी पारिवारिक सदस्यों के बीच संपत्ति उपहार में देने पर लगाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने अंतरिक्ष डॉकिंग प्रयोग स्पेडेक्स मिशन के हिस्से के रूप में रोलिंग प्रयोग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। संगठन के अध्यक्ष वी नारायण ने कहा कि इसरो को विभिन्न परिस्थितियों में डॉकिंग की आवश्यकता होगी, जिनमें से कुछ को वर्तमान मिशन के हिस्से के रूप में आजमाया जाएगा। रोलिंग या रोटेटिंग प्रयोग में उपग्रहों में से किसी एक की परिक्रमा करना शामिल है ताकि उपग्रह की गति पर नियंत्रण सत्यापित किया जा सके। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदक 1 अप्रैल से राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
मंत्रालय के बयान के अनुसार भारत में रहने वाले ऐसे बच्चे जो स्वदेशी नागरिक हैं और 31 जुलाई 2025 तक 5 वर्ष से 18 वर्ष के बीच के आयु वर्ग में शामिल हैं, वे ही इन पुरस्कारों के लिए पात्र होंगे। मंत्रालय बहादुरी, खेल, सामाजिक सेवा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा कला और संस्कृति में उपलब्धियों के लिए असाधारण बालक बालिकाओं को सम्मानित करने के लिए हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का आयोजन करता है। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। अक्षित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल।
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने सरकारी खर्च में कटौती के कारण विश्व व्यापार संगठन WTO में अपना योगदान रोक दिया है। ये कदम श्री ट्रंप की अमेरिका प्रथम आर्थिक नीतियों के अनुरूप उठाया गया है, जिसके कारण अब कई वैश्विक संस्थाओं में अमेरिका की भागीदारी कम हो गई है। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से अमेरिका को अलग कर लिया था और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए जारी होने वाली धनराशि में कमी की थी। बांग्लादेश अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने आज सुबह पेइजिंग में चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। मोहम्मद यूनुस 26 मार्च को 4 दिवसीय यात्रा पर चीन पहुंचे थे। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से चेन्नई में खेला जाएगा। वहीं राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के फाइनल में आज हरियाणा का सामना ओडिशा से होगा। ये मैच शाम 6 बजे से रांची में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।